शांति। हम सबके बीच में ब्राह्मण परिवार की शान बाबा के नूरे रतन परम श्रद्धेय शिलू दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से दीदी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस खुशनुमा पलों में खुशियों का गुलदस्ता, दिव्य गुणों से विभूषित बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय शिलू दीदी जी हमारे बीच में हैं। आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि थी। 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही आप बाबा के ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई और लौकिक पढ़ाई पूरी करने के बाद 1969 से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। 1970 से 74 तक आपने बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद में अपनी सेवाएं दी। 74 से 76 तक आपने अफ्रीकी देशों, मॉरिशियस आदि 75 से भी अधिक देशों में आपने ईश्वरीय सेवार्थ यात्राएं की है। ऐसे देश विदेश में बाबा के लाखों बच्चों को आपने ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ाया, आध्यात्मिक उन्नति कराई है। आप वर्तमान समय आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। माउंट आबू में साल भर चलने वाले राजयोग शिविरों का आप कुशल संचालन करती है। आपके दिव्य प्रवचन जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार जैसे चैनलों पर प्रसारित होते रहते हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धनी और हमारे यज्ञ के गौरवशाली रत्न आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में अपने अमृत वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे और बहुत सुंदर विषय धारणा स्वरूप द्वारा सच्ची सेवा हम कैसे करें। आदरणीय दीदी जी, एक बार पुनः दीदी का हम तालियों से अभिवादन करते हैं।
ओम शांति, ओम शांति। इस विशाल शांतिवन में, इस सुंदर डायमंड हॉल में आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विशेष रूप से इंदौर जोन और भोपाल जोन, पंजाब जोन, वैसे तो पूरे भारत से अलग अलग स्थानों से भी आए होंगे, तो जो भी भाई बहने आए हैं उसमें कई पहली बार भी आए होंगे। जो पहली बार आए हैं इस कल्प में वो हाथ उठाएं। काफी है। अवश्य बाबा का बच्चा बनकर अपने को ब्राह्मण कहलाकर इतना ऊंच लक्ष्य प्राप्त कर आप पुरुषार्थी तो बन ही गए। बाबा ने इतना ऊंचा लक्ष्य हमें दिया है, देवता बनना ये तो सबसे ऊंचा लक्ष्य है ही, लेकिन उसके पहले ब्राह्मण बने, ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाए, तो हमें लक्ष्य क्या मिला कि हमें बाप समान बनना है। जो बाबा के अंदर गुण है, चाहे ब्रह्मा बाप समान, चाहे शिव बाप समान, वो गुण हमें धारण करके बाप समान बनना है। और उसके लिए दोनों फादर, दोनों पिता, ब्रह्मा बाप, शिव बाप को फॉलो करना है। उनके कदमों पर चलना है, तब हम बाप समान बन सकेंगे। और बाप समान बने तो फिर फरिश्ता बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता बने, वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे समान फरिश्ता बने, ताकि सब साथ मिलकर परम धाम का गेट खोलें। और फिर घर जाकर फिर नई दुनिया में जाएं। तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, जिसके लिए बाबा कहते हैं एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति। घर जाना है और नई दुनिया में आना है, और उसके लिए ये पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। Hear no evil, see no evil, talk no evil। इस दुनिया की कोई भी बात जो भी है सब evil है, सब, क्योंकि है ही विशेष दुनिया, विकारी दुनिया, पतित दुनिया, यहाँ है ही सारे आसुरी संप्रदाय जिसको बाबा कहते हैं। तो इस दुनिया की क्या बातें करना, जहाँ जाएंगे वहाँ पर विकृतियाँ ही दिखाई देगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी हेरा फेरी बेईमानी छल कपट निंदा क्या नहीं, सारी जो रावण संप्रदाय है बाबा कहते हैं वही दिखाई देती है। और उस उन सब के बीच में आप राम संप्रदाय बने हो, ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। वो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि भगवान से उनकी प्रीत नहीं है, और हम बच्चे बाबा के सच्ची प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, जिनकी भगवान से सच्ची प्रीत है। है ना, सभी ऐसे हाथ उठाएं जो समझते हमारी भगवान से सच्ची प्रीत है। बहुत अच्छा। तो सच्ची प्रीत अर्थात जिनसे प्रीत होती है उन जैसा बनना होता है, उनका आज्ञाकारी होना होता है, उनके गुणों को धारण करना होता है, तब तो कहेंगे ना प्रीत बुद्धि। तो ब्रह्मा बाबा से भी हमारी प्रीत है, तो शिव बाबा से तो प्रीत है ही। ब्रह्मा बाबा की हम संतान बने, मुख वंशावली बने, और ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना शुरू किया। तो जैसे हमें ये लक्ष्य मिला, उस अनुसार बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर वो लक्षण आने चाहिए, क्योंकि जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण आते हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही लक्षण धारण करते हैं। अब डॉक्टर बनने का लक्ष्य है, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो पढ़ाई भी उसी अनुसार करेंगे, और वो जो उसकी विशेषताएं हैं डॉक्टरी की वो उसमें ही बुद्धि जाएगी, तो पढ़ाई भी वही होगी, तो उसके गुण भी वैसे ही होंगे, तो अवश्य वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो लक्ष्य अनुसार लक्षण आते हैं। अगर लक्षण है ही नहीं तो लक्ष्य भी कहाँ तक, लक्ष्य तक पहुँचेंगे, पहुँच ही नहीं सकते हैं। और जैसा लक्ष्य होता है अगर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो इससे सिद्ध होगा कि वो लक्ष्य भी नहीं पहुंच लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचेंगे, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो हम बच्चों ने तो लक्ष्य को तो मजबूत किया है ना, और उसके लिए बाबा ने उस दिन भी कहा कि निरंतर दृढ़ता चाहिए, क्योंकि जैसे हम ब्राह्मण बच्चे बने, माया का अपोजिशन शुरू हुआ। पहले तो हम माया के मुरीद ही थे, उनके ही वश थे, तो उनका विरोध तो था ही नहीं, क्योंकि उनके ही वश थे, विकारों में ही फंसे हुए थे, यहां तक कि यही समझ बैठे थे कि ये विकार ही इस हमारे जीवन का आधार है सफलता के लिए। इसीलिए काम विकार नहीं होगा तो दुनिया कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्रोध नहीं होगा तो समाज में कैसे हम अपना दबदबा बना के रख सकेंगे। अगर लोभ नहीं होगा तो हम कमाई कैसे कर सकेंगे, मोह नहीं होगा तो परिवार की पालना कैसे कर सकेंगे, अहंकार नहीं होगा तो सब हमको दबा देंगे। समाज में ये भी बहुत जरूरी है अहंकार दिखाना, तो अभिमान अहंकार ये चरम सीमा पर है दुनिया में आज। तो सारे ही विकार आज अपने चरम स्वरूप पर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, घोर कलयुग। तो जहां घोर कलयुग है, जिनको पता ही नहीं है कि सतयुग भी आने वाला है, और अभी हम संगम पर हैं, दुनिया बदल रही है, तो वो तो अपने आप को बदलेंगे भी कैसे। लेकिन जैसे हमें पता चला कि नहीं, अब तो दुनिया बदल रही है, अब सतयुग आने वाला है, कलयुग गया की गया, अब हम संगम पर हैं और भगवान आ चुका है, नई सृष्टि की रचना कर रहा है, उसके लिए हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, ये निश्चय होते ही हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करते हैं। और जैसे जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करते हैं, हम महसूस करते हैं कि अब हमारे विचार भी बदल गए हैं, हमारे बोल बदल गए हैं, हमारा कर्म बदल गया है, व्यवहार बदल गया है, तो ये सब महसूसता आने लगती है। पहले देह को देखते थे, अभी बाबा ने कहा नहीं, देह को नहीं देखो, आत्मा को देखो। और उस कल परसों भी बाबा ने कहा, आप जो ज्ञान बाबा से सुनते हो उसमें सब एक मत हो, एक मत। अब अगर आपको कोई कहे कि नहीं नहीं आप आत्मा नहीं हो, आप देह हो, तो आप क्या कहेंगे, आप आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, आप देह हो, ये फलाना नाम रूप वाला व्यक्ति हो, तो आप क्या कहेंगे, आप मानेंगे, मानेंगे हाँ बरोबर कह रहा, हो सकता है आत्मा नहीं है। लेकिन अभी आपको निश्चय हो गया है ना, निश्चय, या थोड़ा संशय भी है कि मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, हा? फिर कोई कहे नहीं परमात्मा तो है ही नहीं, या वो शिव परमात्मा नहीं है, श्री कृष्ण परमात्मा है, आप कहेंगे हो सकता है, कह रहा है, हो सकता है। लेकिन आपका क्या निश्चय होगा सबका, कि मैं आत्मा हूं और मैं शिव बाबा की संतान हूं, शिव परमात्मा अब आए हुए हैं, ये निश्चय बैठा तब तो ब्राह्मण बने, क्योंकि बाबा ने हमारी बुद्धि को ही पलट दिया। जो बुद्धि पहले दुर्बुद्धि थी वो ज्ञान के आधार से सद्बुद्धि बनने लगी, दिव्य बुद्धि बनने लगी, पारस बुद्धि बनने लगी। ना बाबा जब बुद्धि का वर्णन करते हैं तो कितने नाम देते हैं। किसी ने हमको ये लिस्ट बनाकर भेजी है कि बाबा हमारी बुद्धि को कैसे बदलते हैं और क्या बुद्धि बनाते हैं। जैसे बताया ना, दिव्य बुद्धि बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं, सद्बुद्धि बनाते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे, कम से कम 100 नाम उन्होंने लिख के भेजे, अलग अलग शब्द बुद्धि के साथ। और फिर उसके विपरीत, कैसे हमारी बुद्धि पहले थी दुर्बुद्धि थी, आसुरी बुद्धि थी। अंतर भी तो बहुत पड़ गया ना। जब आसुरी बुद्धि है तो निर्णय तो कभी सही नहीं होगा, और जब दिव्य बुद्धि है तो सही निर्णय होगा। तो दिव्य बुद्धि कैसे बने? बाबा ने बुद्धि की तुलना एक तराजू से की है। तो तराजू से क्यों की है बुद्धि की तुलना? क्योंकि तराजू में 3 चीजें होती है। एक होता है वो ऊपर की जो नीडल माना जो सुई होती है ऊपर की, और फिर बीच में रॉड होती है वो डंडी होती है, और फिर नीचे पलड़े होते हैं। जैसे ही होता है ना, जब वो कोई भी स्केल बनाते हैं या कोई बुद्धि को भेंट करते हैं, तो वो चित्र भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो 3 चीजें होती है तराजू में। एक वर्टिकल जो ऊपर होती है वो ये सुई, और फिर हॉरिजॉन्टल सीधी, और फिर नीचे पलड़े। तो तराजू क्या करती है? केवल वजन देती है, बस। अब आप उसमें हीरे डालो, पत्थर डालो, सब्जी डालो, कुछ भी डालो, वो ये नहीं बताएगी इसका दाम क्या है, पर ये बताएगी कि इसका वजन क्या है। तो वजन को ही वो बताती है तराजू, लेकिन वो सही वजन तब बता सकेगी जब जो कांटा है ऊपर का वो सीधा हो, हिले 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 डुले नहीं, सीधा हो ऊपर की तरफ, और जो डंडी हो वो भी सीधी हो, और जो पलड़े हो वो भी बराबर हो। तो दिव्य बुद्धि बनने के लिए क्या जरूरी है? कि वो जो सुई है अर्थात हमारा मन, वो मन एकाग्र हो। मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है अगर हमारी बुद्धि को दिव्य बनाना है। तो अगर मन भटकता ही रहता है, सुई हिलती रहती है, तो फिर निर्णय सही नहीं होगा। और फिर जो डंडी है, डंडी माना पक्षपात रहित, अगर पक्षपात है हमारे अंदर, किसी ने मुझे धन दिया, किसने मुझे कोई लालच दी, तो हम उसका पक्ष ले लेंगे। आजकल तो यही हो रहा है ना, रिश्वत देते हैं और रिश्वत देकर के अपने पक्ष में ले लेते हैं। बाबा कई बार जजों के लिए कहते हैं, न्यायाधीश है, न्याय देने वाला, नेक्स्ट टू गॉड। जैसे भगवान के लिए कहते हैं, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान न्याय पूरा देता है, पूरा न्यायकारी है। तो उसी अनुसार जज भी भगवान की कुर्सी पर है, तो उसको सही निर्णय देना चाहिए, जो सचमुच निर्णय होना चाहिए। अगर वो पक्षपात में आ जाए और घूस खा ले, रिश्वत ले ले, और जिसने अपराध किया है उसको छुड़ा ले या जो भी कर ले उसको छूट दे दे, तो फिर वो तो गुनाहगार हो गया, वो भगवान समान कहाँ हुआ, पूरा न्याय तो दिया नहीं। इसलिए पक्षपात रहित, किसी के भी प्रभाव में नहीं आने वाला। और फिर जो पलड़े हैं उसमें एक तरफ वजन होता है और दूसरी तरफ वो चीज होती है, तो वजन माना जो दिव्य बुद्धि होगी वो किसको वजन देगी, तराजू में वो वजन डालते, वजन माना उस मूल्य, मूल्यों को वजन देगी, गुणों को वजन देगी, धन संपत्ति नाम मान शान को वजन नहीं देगी, गुणों को वजन देगी। इसलिए गुणों को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, मूल्य, वैल्यूज कहते हैं इंग्लिश में। और इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर जीवन में मूल्य है तो जीवन का भी मूल्य है। जीवन का मूल्य तभी ही है जब जीवन में मूल्य है, और अगर जीवन में मूल्य नहीं तो जीवन का भी मूल्य नहीं है। तो आज की दुनिया में क्या है, मनुष्य जीवन जो इतना हीरे तुल्य जीवन है वो आज कौड़ी के बदले क्यों गंवा रहे हैं, क्योंकि मूल्य नहीं है जीवन में। और बाबा ने जैसे हमको ज्ञान दिया, समझ आ गई क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, किससे पाप कर्म बनता है किससे पुण्य कर्म बनता है, वो सद्बुद्धि बाबा ने हमें दी। हमारा ब्राह्मण जन्म होते ही तो हमारा निर्णय भी सही होगा, क्योंकि मन पर शिव बाबा में लगा हुआ होगा और कहीं भी दुनिया के आकर्षणों में नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, दे से दे के सब संबंधों को भूलो, बस केवल मुझे याद करो। ये दिव्य बुद्धि की निशानी है, एकाग्रता की निशानी है। तो इसीलिए जब बाबा हमें इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं तो हम रोज अपने अंदर निरीक्षण करते हैं। पहले तो आत्म चिंतन करते हैं, फिर आत्म ज्ञान हमें मिला कि मैं वास्तव में कौन हूं। आज भी बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया, तुम कौन हो, तुम पूज्य हो, तुम पूर्वज हो, तुम आदि देवता हो, आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, कितने शब्द बाबा यूज करते हैं, और उसी स्वमान में आप रहो। तो जब ये स्वमान हमारे अंदर होगा तो ऑटोमेटिकली हम गलत कर्मों से बच जाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान से हमारा अभी बहुत प्यार है। भगवान हमको इतना प्यार देते हैं, जो हम महसूस करते हैं ये भगवान का प्यार ही हमें चला रहा है। हमको कौन चला रहा है, बाबा का प्यार हमें चला रहा है। लेकिन बाबा जब प्यार करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारी इतनी महिमा करते हैं, जिससे प्यार होता है ना उसकी बहुत महिमा की जाती है, भले उसमें वो कमियां हो भी, लेकिन वो कमियां नजरअंदाज कर की जाती है और प्यार दिया जाता है और उसकी महिमा गाई जाती है। ना छोटा बच्चा भी होगा ना, वो डरेगा, ये करेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, तो माँ बाप क्या कहेंगे, नहीं बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत निर्भय हो, तुम ये हो ये हो, मतलब उसको चढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर उसको कह दे बच्चे माँ बाप बच्चे को, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो कोई काम के नहीं हो, तुम तो ये हो, पता नहीं क्या क्या बातें शब्द उनको कह दे, तो उस बच्चे में तो निराशा आ जाएगी। लेकिन जिससे प्यार है, चाहे वो कैसा भी है, उसकी सदा महिमा करेंगे माता पिता, क्योंकि प्यार है। ये निशानी है कि उनकी महिमा करेंगे। अब जिससे प्यार नहीं होता ना, कहेंगे छोड़ो ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। तो इसीलिए भगवान हमें प्यार कर रहा है, वो कैसे सिद्ध होता है? इतने सारे टाइटल बाबा हमें देते हैं, रोज वरदान मिलते हैं, रोज टाइटल मिलते हैं हर मुरली में। और अव्यक्त बाप दादा तो इतने टाइटल देते हैं, जो लास्ट में किन बच्चों को याद प्यार देते हैं। इतने सारे जो मुरली चलाई, जो वरदान दिए, जो टाइटल दिए, वो लास्ट में याद प्यार में भी देते हैं। सारी मुरली का सार उसमें आ जाता है। और शुरू में भी यही वाणी में ये शब्द होते हैं, आज बच्चों, आज बाप दादा किन को देख रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, कौन से बच्चों से मिल रहे हैं, तो आ जाता है होली हंसों से मिल रहे हैं, आधार मुहूर्त बच्चों से मिल रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। सचमुच जब मैं मुरली सुनती हूँ अव्यक्त बाप दादा की, चाहे साकार बाबा की, हेडिंग में सबसे पहले मीठे मीठे बच्चे, ये मीठे बच्चे में ही कितना प्यार भरा हुआ है। और जो टाइटल और मुरली की हेडिंग आती है उसमें भी कितना प्यार भरा हुआ है। याद प्यार में तो पूरा प्यार ही भरा हुआ है, और वरदान तो है ही प्यार रूप का, ये भगवान का बहुत बड़ा प्यार है। लेकिन फिर बाबा इतना प्यार हमें देते हैं, तो हमें उस प्यार का रिटर्न भी तो करना है। ऐसे नहीं प्यार मिलता जाए, हाँ हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और कहीं मियाँ मिठू बन जाए। मियाँ मिठू क्या होता है? मियाँ मिठू एक मिसाल देते हैं कि एक मियाँ जी थे, उसको एक तोता था, मिठू तोता को कहते हैं। तो वो जो मियाँ जी थे वो अपनी तारीफ बहुत करता था, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। तो वो जो मिठू था उनका उनका तोता, वो सब सीख गया। अब जो मियाँ जी बोलते थे वो तोता भी बोलता था, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। अकल तो थी नहीं, तोते को क्या अकल होगी, लेकिन बोलना तो बहुत आता था और वो ही सारा दिन सुनता था। तो मैं ऐसा मैं ऐसा, तो वो मियाँ मिठू जो केवल अपनी महिमा करता रहता है, वो मियाँ मिठू और धारणा है नहीं। लेकिन बाबा हम बच्चों को उस रूप से देखते इसलिए नहीं देखते हैं कि यहाँ धारणा नहीं है तो चलो इनको इनकी ग्लानी करो, नहीं। पर बाबा हमको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि उस ऊंच कोटि की स्थिति में देखते हैं हम कितने ऊंचे थे। फिर बाबा देखते हैं कि बाबा इतनी महिमा करते हैं, कितनी ऊंची स्थिति से देखते हैं, फिर भी बच्चे बदलते क्यों नहीं है, बदलते क्यों नहीं है? हाँ, तो जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चे को कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, हाँ तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक है, पढ़ाई करो, क्योंकि माँ बाप शुभ चिंतक होते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, हाँ नाम कमाएगा, तो इसलिए पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई है तो सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई होगी, अच्छे अच्छा पद मिलेगा, तो इसलिए पढ़ो। लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो फिर माँ बाप उनको कैसे फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए? अब जबरदस्ती तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, बेटा देखो तुम फर्स्ट नंबर आओगे ना तो हम तुमको साइकिल लेकर देंगे, मैं तुमको ये लेके दूंगा, मैं तुमको वो लेके दूंगा। पिता उनको प्रलोभन देता है तो बच्चा कहेगा हाँ पढ़ लूंगा तो मिलेगा। बहुत छोटा है तो कहेंगे तुम ये अपना नाम बताओगे, नाम नहीं बता रहा अपना, अच्छा तुम नाम बताओगे तो तुमको चॉकलेट देंगे, चॉकलेट देंगे, तो चॉकलेट देखता है नाम बोल देता है अपना, तो प्रलोभन मिलता है उनको। तो शिव बाबा कोई कम प्रलोभन दे देते हैं क्या? हर मुरली में क्या प्रलोभन देते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक बनोगे, बच्चे हाँ तुम नर से नारायण बनोगे, सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य होगा, कितना मानो आप बच्चे ये बनोगे, आपको ये बाबा देंगे, हथेली पर स्वर्ग बाबा लाए हैं आप बच्चों के लिए। तो जब बाबा इस प्रकार कहते, ये भी बाबा के बाबा का प्यार है, कितना प्यार से बाबा में कहते। फिर बाबा कहते हाँ कोई ऐसे झूठ मूठ नहीं कह रहे हैं, सचमुच देंगे, ऐसे नहीं कि बस मुख से कह दिया, जो भगवान कहे वो तो सत्य वचन महाराज होता है ना, जरूर देते हैं। लेकिन फिर बाबा देखते हैं कि इतना प्रलोभन भी बच्चों को देते हैं तो भी बच्चे सुधरते नहीं है, तो फिर तीसरा उपाय क्या है, तीसरा उपाय क्या है? हाँ पिताजी कहेगा देखो तुम पढ़ोगे नहीं ना तो देखो तुमको थप्पड़ मिलेगी, हाँ थप्पड़ लगाएंगे, माँ थप्पड़ लगाएगी, मम्मी थप्पड़ लगाएगी, हाँ मारेगी, इसीलिए पढ़ो पढ़ो, हाँ देखो तुम्हारे लिए अच्छा है, तो थोड़ा उसको डर भी बिठाते हैं। तो बाबा भी हमको डर बिठाते हैं, ये भी प्यार है बाबा का। कैसे डर बिठाते हैं? बच्चे देखो अगर तुम पावन नहीं बनेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे, सजाओं का बाबा ऐसे नहीं डर डराते हैं। कई कहते बाबा हमको डराते हैं क्या, धर्मराज की सजाएं मिलेगी, ये होगा वो होगा, विनाश की बातें सुना करके डरा रहे हैं भगवान हमें, हमको डरा नहीं रहे हैं, हमको सावधान कर रहे हैं। जैसे मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना जो मौसम बताता है, तो अगर मौसम बताने वाला कहेगा कि आज बहुत बारिश आने वाली है, आज तूफान आने वाला है, हाँ घर से नहीं निकलो बाहर, घर में रहो, बहुत तूफान होगा, तो हम कहेंगे क्या उनको कि आप हमको डरा रहे हो क्या, डरा रहे हो क्या? नहीं नहीं आप सावधान हो जाएंगे ना और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, या कहीं ज़रूरी जाना है छाता लेके जाएंगे, रेनकोट लेके जाएंगे, उस अनुसार तैयारी करेंगे। तो ये कोई डराने की बात नहीं है, हाँ हमको बाबा डराते हैं धर्मराज की सजाएं बता कर, नहीं ये भी प्यार है बाबा का, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए, श्रेष्ठ बने, महान बने। तो इतनी बातें जो बाबा हमको हर मुरली में कहते हैं, एक प्रेम पत्र है भगवान का बाबा की मुरली, पूरी श्रीमत है बाबा की मुरली, क्या करो क्या नहीं करो, क्या देखो क्या नहीं देखो, क्या बोलो क्या नहीं बोलो, क्या सोचो क्या नहीं सोचो, सब कुछ बाबा बताते हैं। तो इतना प्यार करेगा कौन जितना हाँ बाबा करते हैं। तो सदा हम बच्चे भी बाबा को ये संकल्प दे, प्रतिज्ञा करें कि बाबा हम आपका नाम अवश्य रोशन करेंगे। फिर बाबा कहते बच्चे सेवा करो, अब सेवा करो परंतु अगर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो हम क्या सेवा कर सकेंगे? क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि आजकल दुनिया सुनना कम चाहती है, क्योंकि बहुत सुनना है, आधा कल्प से सत्संगों में गए हैं, साधु संत महात्माएं गुरु गुसाई शास्त्र आदि कितना सुना है, क्या नहीं सुना है। अभी तो ऐसा कनरस हो गया है, कोई कहानी सुनाओ तो आएंगे, नहीं तो नहीं, कनरस चाहिए, कनरस, ज्ञान की बातें नहीं चाहिए, कनरस चाहिए। तो बहुत सुना है लेकिन बाबा कहते हैं वो तो कनरस हो गया जो कुछ भी सुना, क्योंकि नीचे ही उतरते आए, नीचे ही गिरते आए, ऊपर तो चढ़े ही नहीं। और अभी बाबा हमको कहते हैं नहीं, तुमको बाबा ने इतना लक्ष्य ऊंचा दिया है, अभी और नीचे नहीं गिरना है, अभी और कोई आगे पाप कर्म नहीं करना है, पर साथ साथ छोड़ना भी कुछ नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां है वो पूरी निभानी है, छोड़ना भी नहीं है। और फिर नया जोड़ना भी नहीं है, वो भी नहीं करना है, क्योंकि अभी समय पूरा हो रहा है। तो छोड़ना भी नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, और कहीं फंसना भी नहीं है। तीनों ही नहीं करना है, न कहीं फंसना है, न नया जोड़ना है, न कुछ छोड़ना है। जो है उसी को निभाना है बस, क्योंकि ये सब मेरा ही हिसाब किताब है। छोड़ के जाऊंगा कहाँ, और नया जोड़ करके फंसना और है क्या मैं? नहीं। इसीलिए बाबा न्यारा और प्यारा बनाते हैं, बालक और मालिक बनाते हैं, बैलेंस रखना सिखाते हैं। तो मन एकाग्र हो और बुद्धि, और वो जो डंडी है वो बुद्धि की डंडी समतल हो, पक्षपात रहित हो, और पलड़ों में मूल्य को महत्व दो, गुणों को महत्व दो। इसको हम कहते हैं अष्ट शक्तियां। कहां हमें सहन करना है, कहां हमें सामना करना है। जहां परिस्थिति आती है वहां सहन नहीं करो, वहां सामना करो, क्योंकि परिस्थिति का सामना करना है, सही निर्णय लेना है कि इसका नतीजा क्या होगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो नतीजा बुरा हो सकता है। तो जहां परिस्थिति आई उसका सामना करो और ठीक निर्णय लेकर के वो कदम उठाओ। परंतु जहां व्यक्ति है तो व्यक्ति का सामना नहीं करना है। अब कोई गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, हमको गाली नहीं देनी है, हमको वो सहन करना है। और सहन भी कैसे करना है, ठीक है ये इसकी इसके विचार होंगे, मैं तो अपने स्वमान में हूँ, बाबा ने तो हमें बहुत ऊंच दृष्टि से देखा है, ये भले कुछ भी मेरे लिए सोचे, वो मेरा अपमान करे, अभिमान वशी अपमान करना होता है, लेकिन मैं अपमानित न रहूं, मैं अपने स्वमान में रहूं, ये सहन शक्ति है। इसीलिए वो मूल्यों को हम महत्व दें और उन्हीं अनुसार हम सेवा करें। इसको बाबा कहते हैं स्वरूप बनकर सेवा करो। तो लोग केवल ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, वो सुन लिया है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ना। इसीलिए कई होते हैं ना, अब पहले बहुत गुस्सा करते थे, फिर बाबा के बच्चे बने तो गुस्सा छोड़ दिया, नहीं करते गुस्सा, पर एक दिन गुस्सा कर लिया, वो पुराना संस्कार इमर्ज हो गया। तो घर वाले क्या कहेंगे, यही तुमको ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाया, पहले तो खूब करते थे, तभी कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा कुमारियों ने ऐसे सिखाया, लेकिन अब जब अगर किया, एक बार भी किया, 10 बार तो नहीं किया, पर एक बार भी किया, यही सिखाया ब्रह्मा कुमारियों ने, तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम, हाँ यही सिखाया वही सोचेंगे। इसलिए हमारी एक दादी थी जो सदा यही कहती थी, झुको झुको मरो मरो सिखो सिखो, झुको हर जाने, आप झुकेंगे बच जाएंगे। वैसे ही जीते जी तो मर ही गए हैं, भगवान के बन गए हैं, और वैसे भी कहते हैं कि मरे बिना न भगवान मिलता है न स्वर्ग मिलता है। जब कोई मरता है तब कहेंगे भगवान के पास गया, जीते जी थोड़ी कोई कहता ये भगवान के पास गया, जीते जी थोड़ी कोई कहता ये स्वर्ग में गया। अगर कोई कहे भी ना मैं तो स्वर्ग में हूँ, ये तो स्वर्ग में स्वर्गवासी बना, तो कहेंगे भाई शुभ शुभ बोलो, स्वर्गवासी बना ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि स्वर्ग में कब जाना होता है, जब मरते हैं। तो हम तो जीते जी मर गए हैं, भगवान के बन गए हैं। इसीलिए झुक झुक मर मर सिख सिख, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, ये संसार, ये देह और देह के संबंध, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और अगर कर्मों का हिसाब किताब है तो वो आपका पीछा करेंगे, आप उनसे भाग नहीं सकते हो जब तक उनको खत्म ना करो। और खत्म कैसे करोगे? शुभ भावना, शुभ कामना से। नेगेटिव को पॉजिटिव से खत्म करोगे, नेगेटिव को नेगेटिव से खत्म नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बाबा हमको कहते हैं वो स्वरूप बनो उस ज्ञान का और उसी अनुसार सेवा करो। आपके बोल में इतना मिठास हो जो सचमुच दूसरा व्यक्ति घायल हो जाए, वो गुस्सा कर रहा है पर आप मिठास से बात करो। मैं एक मिसाल देती हूँ। हम मधुबन में योग शिविर कराते रहते हैं कुछ समय पहले मीडिया ग्रुप आया था, मीडिया वाले, अखबार वाले, टीवी वाले, हाँ वो तो बहुत बुद्धिजीवी होते हैं। तो उन्होंने मतलब क्लास किया, आत्मा परमात्मा ये सब शिविर किया, लेकिन लास्ट दिन क्वेश्चन आंसर सेशन था, प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर में तो हमने किसी भाई को भेजा कि देखो, होशियार भाई था, हाँ बड़ा होशियार भाई था, उसको मैंने कहा तुम ये मीडिया वाले आए हैं, इनका आप प्रश्न उत्तर आप कराओ, वो प्रश्न करे आप उनको जवाब दो। का ठीक है। अब क्या हुआ, वो मीडिया वाले तो बड़े अभिमानी, बुद्धि का नशा तो होता ही ना, और वो भाई बेचारा अच्छा था, ज्ञान युक्त तो बहुत था, लेकिन वो बहस करने लगे उनसे। तो बहस करते करते ये भी बहस करने लगा, उनको गुस्सा आया, इनको भी गुस्सा आ गया। हाँ, वो गुस्से में गुस्सा, आप सोचो क्या होता है। अब ये बैठा था प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, तो वो अपनी बात कहे, वो अपनी बात कहे, तो जैसे कि एक घमसान हो गया। तो अचानक मुझे किसी ने कहा कि बहन जी जल्दी जाओ, वो तो वहाँ तो लड़ाई छिड़ गई है। हाँ, वो भाई आपस में आप पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं, क्योंकि वाक युद्ध हो गया, वाक युद्ध। तो मैं जैसे ही पहुंची तो सब शांत हो गए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, आपके कई प्रश्न हैं, अच्छा आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो सब चुप हो गए। तो हमको किसी ने कहा, बहन जी आपने उस भाई को क्यों भेजा, आपको आना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, क्योंकि बहनों के आगे तो फिर भी भाई थोड़ा झुकेंगे, भाई के आगे भाई क्या करेगा। इसीलिए बाबा ने बहनों को आगे रखा है, सचमुच बहनों को इसीलिए रखा है। दिखाते हैं ना कि जब अर्जुन बाण मार रहा था तो भीष्म पितामह के साथ उसका युद्ध होना था, भीष्म तो क्या किया अर्जुन ने, शिखंडी को आगे रख दिया। शिखंडी भले उस जन्म में तो पुरुष था, लेकिन वो भीष्म पिता में उनको स्त्री के रूप में ही देखता था, और जब स्त्री सामने आई तो तीर कमान नहीं चला, तीर नहीं चलाता था, और इसी के आधार से वो सब तीर लेता गया, क्योंकि शिखंडी को आगे रखा था अर्जुन ने। कहानी आती है ना महाभारत में। तो देखो बाबा ने कितनी बड़ी युक्ति रची है, क्योंकि ये ज्ञान नया है, अब तक ऐसा सुना नहीं जिस प्रकार बाबा बताते हैं, कितना अंतर है। इसीलिए बाबा ने बहनों को आगे किया है, और सचमुच वो इतने शांत हो गए। उसके बाद वो मीडिया वाले तो बस, उसके बाद हमने सोचा प्रश्न उत्तर तो किसी भाई को तो रखना ही नहीं है, बहन ही जाए तो भले बिल्कुल सिंपल होगी वो बहन, इतनी होशियार नहीं भी होगी, लेकिन उस बहन का जरूर स्वीकार करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। एक बार किसी स्थान पर हम गए थे तो वो भाई आगे खड़ा हुआ, कोई बहस कर रहा था, बहुत आर्ग्यू कर रहा था, तो भाई चला गया, उस भाई को तो मारा ही, एकदम उसको थप्पड़ मार दी, और तो उसने कहा, बाद में कहा, बहन जी आप जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई भाई को तो थप्पड़ी मारेगा, बहने फिर भी इतना नहीं करेगी। तो इसीलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए आप अपनी स्थिति से नीचे नहीं आओ, कुछ भी हो जाए अपनी स्थिति को सदा कायम रखो। आपकी सोच कितनी हो, कैसी हो, विचार कैसे हो, बोल कैसे हो, व्यवहार कैसा हो, आपकी दृष्टि सदा पवित्र हो, आपका जो चलन है उसमें कितनी मधुरता हो, चाहे वो दूसरा कैसा भी है। इसलिए बाबा कहते कोई आए बहस मत करो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेट गो, छोड़ दो, छोड़ो तो छूटो। आप पाप कर्म साथ में मत करो, उसने गुस्सा किया हमने भी गुस्सा किया, नहीं ना? किसी बहुत हंसी की बात है ना, किसने मुझे कहा तो मूर्ख हो, तो मूर्ख हो, तो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा तू मुझे मूर्ख कहते हो, तू महामूर्ख हो, समझो हमने जवाब दिया, चिट फॉर टैट, नहले पर दहला। उसने तो मुझे मूर्ख ही कहा और मैंने महामूर्ख कहा। अब इसका क्या अर्थ क्या हुआ कि पहले मैंने स्वीकार किया ना कि मैं मूर्ख हूं। अगर मैं स्वीकार ही नहीं करती तो मैं महामूर्ख भी क्यों कहूं। मूर्ख नहला किसने रखा और मैंने दहला रखा, माना नहले को स्वीकार किया और मैंने उसके ऊपर दहला रखा। तो उसने तुम मूर्ख हो कहा और मैंने महामूर्ख हो तुम कहा। अब वो तो फिर और आगे बोलेगा, फिर मैं और आगे बोलूंगी, उसका नतीजा क्या होगा। इसीलिए बाबा कहते तुम धीरे से चले जाओ, वहां से सामना मत करो। तो जहां व्यक्ति है वहां सामना नहीं करना है, वहां सहन करना है उस समय, और अपने स्वमान में रहना है। जब पर परिस्थिति है, कोई ऐसी बात है आपको उसको दबा के नहीं रखना है, वर्णन करना नहीं तो पता नहीं क्या रूप ले लेगा। कहीं आग लग रही है, कहीं धुआं निकला है, आग है, हम कहीं नहीं 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 तो केवल धुआं है, परंतु अगर कोई धुआं है तो वह आग की निशानी है। क्यों वो धुआं निकला है, कहीं आग होगी जरूर, और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो बड़ा आग का रूप ले सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो स्वरूप बन के ज्ञान दो, इतना प्रेम स्वरूप बन के ज्ञान दो, शांति स्वरूप बन के ज्ञान दो, सुख स्वरूप बन के ज्ञान दो, सरल स्वभाव बन के ज्ञान दो, दिल से बोलो, दिमाग से नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं दिल का तीर दिल को लगता है, और दिल को लग गया तो घायल जरूर करेगा, और जो दिमाग का तीर है, माना खाली अपना शो कर रहे हैं, बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, वो दिमाग का तीर दिमाग को लगेगा और उड़ जाएगा, निकल जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। पर दिल से निकला हुआ वो तीर दिल को लगेगा और घायल करेगा। हमारी दादियां कहाँ पढ़ी लिखी तो थी नहीं, आजकल तो बहुत पढ़ी लिखी बहने हैं, पर ये दादियां हमारी कहाँ इतनी पढ़ी लिखी थी, कुछ भी नहीं। लेकिन दादियां अगर दो शब्द बोलती थी सब इतने घायल हो जाते थे। हाँ दादी ने ये कहा, दादी ने कहा, बस दो शब्द ही खाली बोले, ज्यादा नहीं। मुझे याद है एक विदेशी वीआईपी था, अब दादी जी के सामने हम उनको ले गए। अब दादी जी थोड़ी इंग्लिश बोलती थी, दादी प्रकाशमणि इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलती थी, तो दादी से कुछ शांति की बातें कर रहा था, पीस की बातें। अब बड़ी दादी ने देखो कैसे जवाब दिया, आई पीस, यू पीस, वी ऑल पीस। अरे वो इतना खुश हो गया, ताली बजाने लग गया इंग्लिश भी ठीक नहीं थी। आई पीस माना मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो, ये सब नहीं कहा क्योंकि इंग्लिश बोल रहा था। तो दादी ने थोड़ा इंग्लिश बोला, आई पीस, है ना, मैं शांति, यू पीस, यू ऑल्सो यू शांति, तुम भी शांति, हम सब शांति। पर शांति शब्द सुना और वो इतना हंसने मुस्कुराने लगा, सब प्रश्न ही खत्म करती है। तो तीन शब्द ही बोले, ये हमारी दादियां थी सचमुच। लेकिन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत थी, प्रेरणा स्रोत। दादियों ने तो ब्रह्मा बाबा को देखा, और ब्रह्मा बाबा जबकि इतना लौकिक में इतना बड़ा जौहरी था, क्या नशा होगा लौकिक में इनको, क्योंकि राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना होता था, अंग्रेजों से उठना बैठना होता था, उस समय तो अंग्रेजों का राज्य था, तो कितना नशा होगा। और उनके दुकान पर आते थे हीरे जवाहरातों के जेवर लेने के लिए, तो बाबा में क्या ठाट थी। लेकिन जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बिल्कुल बदल गए बाबा, बिल्कुल बदल गए। क्या अभिमान होता है, बिल्कुल रिंचक मात्र भी बाबा के व्यवहार से नहीं दिखाई देता था, रिंचक मात्र भी। कई हमसे पूछते हैं, बाबा कभी गुस्सा करते थे? गुस्सा क्या होता है बाबा को पता ही नहीं था, इतने बदल गए, बाकी पहले तो क्यों नहीं करते होंगे। लेकिन लौकिक जीवन में भी बाबा ने गुस्सा नहीं किया। बाबा, हम दादी निर्मल शांता जो बाबा की बेटी है, बहू है उनकी, उनसे हम सब सबसे मिले, उनसे पूछते थे तो लौकिक में भी नहीं करते थे, अपने बच्चों को भी नहीं डांटते थे। एक मिसाल देती है दादी निर्मल शांता कि उस समय हीरों का व्यापार तो था ही बाबा का, तो कुछ हीरे विदेश से आए थे और वो नौकर गिनती कर रहा था, तो देर हो गई थी तो वो रख करके ऐसे ही चले गए, तो पीछे से बच्चे आए और वो हीरे उठा लिए। अब सवेरे जब नौकर आया देखने तो कहा कि इतने हीरे तो गायब है, तो लगा होगा बच्चों ने लिया, बच्चे थे उनके जो बाबा को लौकिक बच्चे भी थे। अभी बच्चों को डांटा नहीं, बहुत प्यार से कहा, निर्मल शांता दादी बताती थी, तो मुझे बुलाया बाबा ने, मुझे कहा देखो कल जो तुमने हीरे लिए है ना, ये नहीं कहा तुमने लिए या नहीं लिए, ऐसे नहीं, बाबा को पता था बच्चों ने ही लिया है, तो कल जो हीरे लिए ना वो हमको लौटा दो, हम आपको बहुत अच्छा हार बना के देंगे। तो सचमुच वो लेकर आ गई, हार जो लेके गई थी वो ऐसे नहीं डांटा, कुछ नहीं, मारा नहीं, तुमने हार, तुमने ये क्यों हीरे लिए, लेकिन इतना प्यार से उनको कहा जो वो सचमुच वो ही वहीं पर सब दे दिया। बच्चे तो इनोसेंट होते ही है। तो इसीलिए युक्तियां रचनी होती है, जिन युक्तियों से हम कैसे दूसरों को अपना बना सकते हैं। तो अगर हमारी सचमुच वो स्वरूप होगा जो बाबा हमें धारणा स्वरूप बोलते हैं, उसी प्यार से, उसी मिठास से, उसी अंतर्मुखी अवस्था से, अगर हम किसको बाबा का ज्ञान देते हैं वो गुस्सा दिलाएगा पर हम गुस्सा नहीं हो, तब वो स्वीकार करेगा कि सचमुच इनकी ऐसी धारणा है। ऐसे कई परीक्षा लेने आते हैं, देखते हैं इनको गुस्सा आता है या नहीं आता है, परीक्षा लेते हैं, परंतु परीक्षा में देखते हैं कि हाँ गुस्सा नहीं किया तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां सच्ची है, सच्ची है। हाँ बहने, हाँ ये अपने अंदर ये धारणा बनाने रख होनी चाहिए। भाई भी सेवा करते हैं, तो जो सेवा करते हैं अवश्य वो सेवा का फल तब मिलेगा जब वो धारणा स्वरूप बन करके सेवा करेंगे, और अंदर में पक्का निश्चय, ऐसे नहीं पता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने ये कहा है, क्यों नहीं सच होगा, क्यों नहीं हम कह सकते। लेकिन उसी प्यार से, जैसे छोटे बच्चों को कड़वी दवा पसंद नहीं है तो चलो हाँ थोड़ा मिठास डाल करके उनको दिया, तो दवा तो लेंगे ना, भले मिठास डाल करके दिया पर दवा तो कड़वी है, तो ये ज्ञान भी नया है। इसलिए अगर धारणा स्वरूप बन के हम देते हैं अवश्य आत्माएं आकर्षित होकर के आती है, और सचमुच बाबा का नाम बाला होगा, और जब हम बाबा का नाम बाला करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाबा की प्रत्यक्षता सारे विश्व में होगी, और अंत में हम यही कहेंगे कि जब हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, तो कई लोग कहते हैं बहन जी आप लोग ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हो, परंतु वो फलाने भी ऐसा ही सुनाते हैं, वो भी ऐसा ही सुनाते हैं, आप भी सुनाते हो अच्छा सुनाते हो पर वो भी अच्छा सुनाते हैं। वो भेंट तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अच्छा सुनाते आप भी अच्छा सुनाते हो, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं आप भी अच्छा सुनाते हो, लेकिन वो समय आएगा जब वो कहेंगे आप ही अच्छा सुनाते हो। भीक नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं भगवान के ज्ञान में और दुनिया के जो भी सुनाते हैं उनमें, कोई कंपैरिजन नहीं, भेंट है ही नहीं। ये यूनिक ज्ञान है, न्यारा ज्ञान है, नहीं दुनिया के लिए ज्ञान है। बस यही बुद्धि में रख करके हमें भी वो नवीनता का रूप ला करके बाबा की सेवा करनी है, तब सच्ची सच्ची सफलता मिलेगी और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ठीक है, चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।